सेलिब्रेशन टाइम। वसुंधरा भरी हुई आंखों से वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, अब आगे। आस्था बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ जाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इतना पढ़ते ही वसुंधरा ने हैरानी से अपनी आँखें चौड़ी कर लीं और संजना को देखते हुए एकदम से बोली, लेकिन आस्था मेरी बातों पर यकीन क्यों करेगी? और वो मेरी मदद के लिए क्यों आएगी, जबकि मैंने उसके पति के साथ इतना बुरा सलूक किया है? उसके मुंह से ये सवाल सुनते ही संजना जोर जोर से हंसते हुए अचानक सख्त चेहरे के साथ बोली, क्योंकि मैं आस्था को अच्छी तरह जानती हूँ। वो एक नंबर की इमोशनल फूल है। अगर तुमने उसे अपनी बातों से इमोशनल कर दिया तो वो तुम्हारी बातों में फंस जाएगी और तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। वसुंधरा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे आस्था के लिए अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसने फैसला किया कि वो संजना की हर बात मानेगी, क्योंकि अगर उसने संजना को मना कर दिया तो वो उसके बेटे वीर को जान से मार डालेगी। संजना उससे पहले ही ये बात साफ कर चुकी थी कि अगर वसुंधरा और वीर ने उसकी कोई बात नहीं मानी तो वो दोनों माँ बेटे को ख़त्म कर देगी। वैसे भी अरमान सिंघानिया उन्हें घर से बाहर निकाल चुका था, और उसके बाद उनके साथ क्या होता है क्या नहीं, इससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। और अगर संजना उन्हें मार भी देती, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर अभिमान जी का दिल आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सुबह सुबह ही वो पंडित जी नानी माँ के साथ मिलकर सारी तैयारियाँ करवा चुके थे। उन्होंने पंडित जी से भी बात कर ली थी, इसलिए वे भी सुबह ही आ गए थे। नामकरण की सारी विधियां शुरू हो चुकी थी। सभी ने अच्छे से नहा धोकर तैयार हो चुके थे और सब पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक आस्था और अरमान का कोई अता पता नहीं था। वो दोनों अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए थे। सुबह 8 बजे ही पूजा का मुहूर्त था और आस्था अरमान की बाहों में गहरी नींद सोई हुई थी। कई दिनों से अरमान का दिल भी बेचैनी से भरा हुआ था और वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था, लेकिन आज आस्था के करीब होने पर उसे भी सुकून की नींद आ गई थी। नानी माँ ने सोचा कि अब जाकर आस्था को जगा देना चाहिए, लेकिन रश्मि ने इशारे से उन्हें मना कर दिया, अभी नहीं, अगर वो दोनों साथ में हैं तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस पर सबने एक दूसरे की तरफ सहमति से देखा। वहीं दूसरी ओर अरमान के रूम में आस्था के फ़ोन पर अचानक घंटी बजने लगी और उसकी नींद उसकी आवाज़ से खुल गई। फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि वसुंधरा का ही था। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी, वैसे ही आस्था कसमसाकर उठकर बैठ गई और उसके साथ ही अरमान भी उठ गया। दोनों ने एक दूसरे को एकदम से देखा। आस्था ने अचानक खुद को देखा। कल रात तो उसने कुछ और पहना था और अब उसके कपड़े उल्टे सीधे थे। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ी। उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। इससे पहले कि वो कॉल रिसीव कर पाती, उससे पहले ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और वो अचानक से उछलकर चिल्ला पड़ी, ये क्या हो गया? हम इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं? हमारी प्रिंसेस का नामकरण होने वाला है और हम घोड़े बेचकर सो रहे हैं? ओ माई गॉड! ये कहते ही आस्था झटके से बेड पर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रख के अरमान को घूरते हुए बोली, आपने हमारे साथ क्या किया है? हमारे कपड़े ऐसे उल्टे सीधे क्यों हैं और आप हमारे पास क्या कर रहे थे? इस बात पर अरमान ने अपने हाथ से माथा रगड़ना शुरू कर दिया, मानो जैसे सुबह सुबह वो आस्था के साथ सर खपाना नहीं चाहता था। पहले बेड से नीचे उतर कर बात करो। इतना कहते ही वो आस्था को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। लेकिन अरमान के इस बिहेवियर ने आस्था के गुस्से को और ज्यादा हवा दे दी। अचानक उसे कुछ याद आया तो उसने अपनी आंखें छोटी करके अरमान से पूछा, नहीं नहीं, कल हम नशे में थे। भले ही हमें कुछ याद न हो कि क्या हुआ था, लेकिन अब हमें जानना है कि हमारे कपड़े इस तरह बदले हुए क्यों हैं। कहीं आपने हमारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की? हूँ, जवाब दीजिए। ये आस्था का सवाल नहीं, सीधा इल्जाम था, जिसे सुनकर अरमान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। उसने बात घुमाते हुए सख्त आवाज में कहा, देखो, अपनी फालतू की बकवास बंद करो, हमें पहले ही बहुत लेट हो चुका है। अगर नामकरण की विधि में देरी हुई तो पूरा परिवार हमारे बारे में क्या सोचेगा? इतना सुनते ही आस्था बिना कुछ कहे बाथरूम में जाकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बाथरूम में खड़े खड़े उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी, अरमान की हल्की सी किस, उसका उसे छूना और वो बेचैनी। सच तो ये था, आस्था उस वक्त पूरी तरह बेहोश नहीं थी, बस बेहोशी का नाटक कर रही थी। अब ये सब सोचकर उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। जल्दी जल्दी उसने शावर लिया, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने कपड़े बाथरूम में लाना भूल गई थी, इसीलिए मजबूरी में उसने अरमान की शर्ट पहन ली और बाहर आ गई। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, जिसे वो झटक झटक कर सुखा रही थी। वो जानबूझकर अरमान को इग्नोर कर रही थी, जबकि अरमान पीछे से बस उसे एकटक देखे जा रहा था। जब आस्था के बालों से गिरती हुई पानी की बूंदें अरमान पर पड़ी थी, तब उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आस्था को इस तरह देखना उसके दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। तभी आस्था उसे झुंझलाकर बोली, आप वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी जाइए, तैयार हो जाइए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही उसकी आवाज़ अरमान के कानों में पड़ी, वैसे ही वो अपने ख्यालों से बाहर आया और तुरंत बाथरूम में चला गया।
आखिरकार मैं इस लड़की की बातें इतनी आसानी से क्यों मान रहा हूँ और क्यों इसे उल्टा जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। खुद से ही सवाल जवाब करते हुए वो बड़बड़ा रहा था। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तब आस्था साड़ी पहने हुए उसके सामने मुस्कुराते हुए तैयार खड़ी थी। साड़ी में उसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी। उसकी कमर की झलक देखकर अरमान की हालत थोड़ी बिगड़ गई। अचानक आस्था ने जानबूझकर उसके सामने आकर ऐसे ही पूछा, देखिए मैंने ये साड़ी सही से तो पहनी है ना, कहीं से इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही? नीचे हमारा किसी के सामने मजाक नहीं बनना चाहिए। अरमान उसके बेहद करीब आया। आस्था को लगा शायद अब वो उसे किस करने वाला है। इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद कर पाती उससे पहले ही अचानक अरमान घुटनों के बल बैठ गया और उसकी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगा। उसने आस्था की साड़ी को और कसकर उसकी कमर पर ठीक करते हुए कहा, खबरदार अगर तुम्हारे शरीर का इतना सा भी हिस्सा किसी को दिखा तो। इस पर आस्था का चेहरा हल्का सा बदला। एक पल के लिए वो चौंक गई और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अरमान ये सब इसलिए कह रहा है ताकि कोई और उसे गलत नजर से ना देख सके। ये बात उसके दिल में आते ही उसने अरमान को गौर से देखा और अंदर ही अंदर राहत महसूस की। आस्था के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई जो माहौल को हल्का और फ्रेश बना रही थी। आस्था को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे अरमान के अंदर का पति जाग रहा है, वही पति जो पहले भी उसकी इसी तरह से देखभाल किया करता था। आस्था जल्दी से बाहर आ गई। जब तक वो नीचे पहुंची तब तक सभी लोग पूजा में बैठ चुके थे। सभी वहां पहले से मौजूद थे। आस्था ने सबसे देरी से आने के लिए माफी मांगी। नानी माँ ने उसे चंचलता से कहा, कोई बात नहीं बेटा, पूजा अभी अभी शुरू हुई है। आस्था ने प्रिंसेस को प्यार से गोद में लिया। पंडित जी ने नामकरण की विधि पूरी की और नाम का पहला अक्षर ग बताया। पंडित जी के मुंह से निकले उस शब्द ने रौनक और आहान को एक पल के लिए सदमे में डाल दिया। दोनों ही एक दूसरे को एक्साइटेड होकर देखने लगे, लेकिन दोनों ने पिछली बार जिस तरह से झगड़ा किया था ये याद आते ही उन्होंने अपना सर झुका लिया और अपना इरादा बदल दिया।
तभी आहान आस्था की ओर देखकर दबी हुई आवाज में बोला, भाभी आप ही नाम रख दीजिए ना प्लीज। आस्था ने आहान की बात सुनी और आंखें घुमाई और रौनक को देखा तो रौनक ने भी आंखों ही आंखों में उसे सहजता से सहमति जताई। तब सभी लोगों ने भी एक साथ हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ आस्था अब तुम ही नाम रखो, आखिरकार तुम इस बच्चे की बड़ी माँ हो। तभी आस्था ने पलके झपकाते हुए हामी भरी एक बेहद प्यारी मुस्कान के साथ कहा, हमारी प्रिंसेस का नाम होगा गुनगुन सिंघानिया। ये नाम सुनकर आहान का दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि यही नाम तो उसने पहले डिक्लेयर कर दिया था। ये नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी सदस्यों को गुनगुन नाम बहुत पसंद आया। वहां मौजूद लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सभी खुशी से चिल्लाने लगे। अरमान भी मन ही मन खुश हो रहा था लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पाया। फिर इसके बाद मारिया और टाइगर के बेटे का नाम चूज करने की बारी आई। तब मारिया तपाक से बोली, मेरे बेटे का नाम होगा डेविड। ये नाम सुनकर अगले ही पल टाइगर का पारा हाई हो गया क्योंकि डेविड का नाम ही काफी था टाइगर के गुस्से को हवा देने के लिए। वो गुस्से से उठकर वहां से चला गया। आस्था और सभी लड़के समझ गए थे कि टाइगर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। फिलहाल सभी ने मारिया के फैसले की कदर की और उस वक्त उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आस्था ने मन ही मन डिसीजन लिया कि वो इस बारे में मारिया से बाद में जरूर बात करेगी। फिलहाल थोड़ी देर बाद मानी माँ ने अरमान से कहा कि दामाद जी अगर आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अरमान उन्हें बिना कुछ कहे लैपटॉप लेकर सोफे के एक तरफ बैठ गया। नानी माँ उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, उन्होंने उसे कुछ और नहीं कहा। उनका इरादा अरमान को डिस्टर्ब करने का नहीं था इसलिए वो चुपचाप वहां से निकलकर रघुवंशी मेंशन चली गई। फिलहाल बच्चों का नामकरण अच्छे से पूरा होने के बाद गोद भराई की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई थीं। घर का माहौल एक बार फिर खुशियों से भर गया था। दादाजी और अभिमान जी सभी बच्चों को लेकर रघुवंशी मेंशन जा पहुंचे थे। वहां जाकर वो अच्छी तरह से सारी तैयारियां करवाने लगे थे, लेकिन आज अभिमान को वसुंधरा की पूरी तरह से याद आ रही थी क्योंकि पहले जन्माष्टमी की सारी तैयारियां किस तरह से उन्होंने अपनी देखरेख में करवाई थीं ये सब याद करके उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा था। फिलहाल अपनी झुंझलाहट कम करने के लिए उन्होंने कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाई ली थी और बिना किसी को कुछ भी पता चले उन्होंने उस कोल्ड ड्रिंक बोतलों में कुछ शराब मिला दी थी ताकि किसी को इस बात का एहसास ना हो कि इस वक्त वे शराब पी रहे हैं या फिर किसी तरह के नशा में हैं। आस्था भी फटाफट से सारी तैयारियां करवाकर गोद भराई की रस्म पूरी होने के बाद वहां से जल्द अपना असली मकसद पूरा करने के लिए डाक विला जाना चाहती थी, इसीलिए उसने जी जान से जल्दी से सारी तैयारियां शुरू कर दी थीं। लेकिन इस बीच उसका गला एकदम से सूखने लगा। अभिमान जी जो कि किसी को इंस्ट्रक्शन देने में बिजी थे जिस वजह से उनका ध्यान आस्था पर नहीं था। आस्था ने उनके पास के टेबल पर कोल्ड ड्रिंक बोतल देखी तो उसने तुरंत एक झटके से एक बोतल उठाकर अपने होठों से लगा ली। उसे वो कोल्ड ड्रिंक का स्वाद थोड़ा कड़वा सा लगा क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी इसलिए उसने इस स्वाद को नजरअंदाज कर दिया। वहीं अभिमान जी ने जैसे ही ये देखा कि आस्था वही कोल्ड ड्रिंक पीने वाली थी जिसमें उन्होंने शराब मिलाई थी तो उनका दिल गले में अटक गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो एकदम से सकपका जाते हैं, इसलिए पहले कि वो कुछ कर पाते उससे पहले ही आस्था वो कोल्ड ड्रिंक पी चुकी थी। फिलहाल अब क्योंकि गोद भराई की सारी तैयारी भी पूरी हो चुकी थी और वहां पर अच्छे तरीके से सारा नाच गाना शुरू हो चुका था, रश्मि की खुशी उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। वो इतनी खुश हो गई थी कि उसकी आंखें चांद की तरह चमकने लगी थी।
रश्मि को इतना एक्साइटेड देखकर सबको ऐसा लगा जैसे उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई हो। सभी मन ही मन उसके लिए काफी खुश थे। वही नानी माँ के कहे अनुसार सभी ने बारी बारी से गोद भराई की रस्में जारी रखीं। उस समय सभी लड़कियां किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थीं। नानी ने रश्मि को आशीर्वाद दिया और उसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए और उसकी नज़र उतारते हुए उन्होंने चुपके से अपने चेहरे से छल के आंसू को पोंछ लिए। ये आंसू खुशी के आंसू थे। सभी लेडीज धीरे धीरे अलग अलग तरीके से अपनी मस्ती में डूब चुकी थीं। वहीं आस्था नशीली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और उसने वहां धमाकेदार डांस करना शुरू कर दिया था। आस्था को इस तरह से अतरंगी डांस करते हुए देखकर सभी की आंखों में हैरानी की चमक उभर आई थी, क्योंकि आस्था वहां पर एकदम अजीब सा डांस कर रही थी, जिसे देखते हुए सभी लड़कियां भी हंसते हुए आस्था का साथ देने लगी थी। वंशिका राधिका भी उसके साथ झूमने लगी थी, लेकिन रौनक और मारिया केवल बैठकर ही उन लोगों को हंसी खुशी डांस करते हुए देख रही थी। रौनक का दिल कर रहा था कि वो भी उन लोगों के डांस का हिस्सा बने, लेकिन नानी माँ की नज़र पूरी तरह से उस पर ही थी, तो वो चाहकर भी डांस फ्लोर पर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि नानी माँ ने पहले ही उसे बड़े साफ शब्दों में समझा दिया था कि अभी उसका शरीर इस लायक नहीं है कि वो डांस कर सके। वो केवल थोड़ी देर वहां बैठकर सबको देखते हुए एंजॉय कर सकती है और उसको यहां लेकर आया गया है, यही उसके लिए काफी है।